नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने धान और कपास सहित 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। वाराणसी हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल और रनवे के विस्तार को भी स्वीकृति दी। सरकार ने परीक्षा में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा 2024 रद्द की, सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर एक दिवसीय श्रीलंका यात्रा पर आज कोलंबो पहुंचेंगे। और आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप क्रिकेट में भारत आज शाम बारबाडोस के ब्रिजटाउन में सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान से खेलेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 84 प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आज श्रीनगर में एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 2000 से अधिक लोगों को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वो 1800 करोड़ रुपए की कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी कल श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे और इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, महाराष्ट्र का वधावन बंदरगाह और गुजरात तथा तमिलनाडु में समुद्र तट के पास पहला पवन टर्मिनल विकसित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने वाराणसी हवाई अड्डे के विकास और राष्ट्रीय फॉरेंसिक बुनियादी ढांचा संवर्धन योजना को भी स्वीकृति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 14 फसलों पर विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को स्वीकृति दी है। धान, कपास, बाजरा, दलहन, तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि सरकार देशभर में 2 लाख गोदाम बनाने पर भी काम कर रही है।
किसानों के पास करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के एवज में जाएंगे किसानों के खातों में। दिस इज 35,000 करोड़ रुपीज मोर देन दी प्रीवियस सीजन। 2 lakh crore rupees will be the total financial implication of the MSP and this is going to be a very significant improvement in farmers' income.
श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2869 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को स्वीकृति दी है। एक अन्य निर्णय की जानकारी देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक बुनियादी ढांचा संवर्धन योजना को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इस दिशा में सरकार ने पहले तटीय पवन टर्मिनल विकसित करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात और तमिलनाडु में 500 मेगावाट क्षमता की 2 परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में सभी मौसम के लिए उपयुक्त नया बंदरगाह विकसित करने का निर्णय लिया है।
आगामी समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल्स रहेंगे, 4 मल्टीपर्पज बर्थ रहेंगी, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ रहेगी, यानी पेट्रोलियम इम्पोर्ट हो गए, ऑयल इम्पोर्ट हो गया, इन सब के लिए। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द ज्वाइंट वेंचर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड। इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन 2 फेजेज में होगा। फेज 1 जो 2029 तक कम्प्लीट होने का प्लान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देशभर में संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह परियोजना को बड़ा परिवर्तनकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश की समुद्री क्षमता का पूर्ण लाभ उठाया जा सकेगा। सरकार ने जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। ये परीक्षा बाद में नए सिरे से आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की गई है, क्योंकि परीक्षा की विश्वसनीयता से समझौता नहीं हो सकता। ये मामला गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 18 जून को देश के विभिन्न शहरों में दो पालियों में यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध विश्लेषण इकाई को कल परीक्षा में गड़बड़ी की कुछ जानकारी मिली थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय ने पटना में नीट यूजी परीक्षा 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्रेस मार्क से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से निपटाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा में अनियमितताओं में संलिप्त किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। पीड़ितों को कल्लाकुरिची, सलेम और पुडुचेरी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कल्लाकुरिची के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया गया है और पुलिस उपाधीक्षक सहित 10 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है और 200 लीटर जहरीली शराब जब्त कर जांच के लिए भेज दी गई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने बताया कि शराब में अधिक मात्रा में मेथेनॉल होने के कारण ये मौतें हुई। उन्होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और सरकार इस अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माई गॉव इंडिया पोस्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाभ अर्जन दर्शाए जाने पर इसकी प्रशंसा की। आंकड़ों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक का 2013-14 में 10,800 करोड़ रूपये से अधिक का लाभ बढ़कर 2023-24 में 61,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने भी पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा पिछले साल निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक में 82% की बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर आकाशवाणी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ उनकी विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण करेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी के गोल्ड और सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर सुबह 8:45 पर किया जाएगा। ये भेंटवार्ता आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल और अन्य मीडिया चैनल पर भी सुनी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय 29 जुलाई से 3 अगस्त तक तेलंगाना में विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। तेलंगाना राज्य कानूनी प्राधिकरण ने बताया कि न्यायालय ने तेलंगाना से 295 मामलों की पहचान की है और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्राधिकरण के सदस्य सचिव सीएच पंचखार ने कहा कि कुछ पक्ष लोक अदालत में अपने मामले सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज श्रीलंका के सरकारी यात्रा पर कोलंबो पहुंचेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर द्विपक्षीय साझेदारी के व्यापक मुद्दों पर श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद ये विदेश मंत्री की पहली यात्रा होगी।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की आज की श्रीलंका यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को और मजबूती देती लग रही है, जहां भारत श्रीलंका के कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धताओं को जारी रखना चाहता है। डॉ जयशंकर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धना के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्री की यात्रा से कनेक्टिविटी परियोजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में अन्य पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गति मिलने की संभावना लग रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुईन फारूकी।
मुंबई में 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है। एमआईएफएफ 15 जून को शुरू हुआ और 21 जून को समाप्त होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज नॉट सिलेक्टेड, द साइलेंट कर्स, शेरा, कर्नल कलसी, वेट टाइम स्टैंड स्टिल, इन एंड आउट, द सी एंड द सेवन विलेजेस और द लास्ट मील समेत कई प्रशंसित फिल्में दिखाई जाएंगी। सत्यजीत रे की पीको भी क्यूरेटेड क्लासिक्स श्रेणी के तहत प्रदर्शित की जाएगी। सुबह के सत्र में एडिटिंग शेपिंग कैरेक्टर्स पर एक मास्टर क्लास का आयोजन किया गया है। आज स्क्रिप्ट टू स्क्रीन चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ्स ऑफ इंटरनेशनल को प्रोडक्शन विषय पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 ग्रुप जी के मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अमरीका को 18 रन से हराया। आज ग्रुप 1 में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान गंगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी यही स्थिति रहने की उम्मीद है। विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। झारखंड में आज और कल और बिहार में 23 जून तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्सों में रविवार तक भीषण गर्मी होने की संभावना है। 23 जून तक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भी भीषण गर्मी पड़ने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज रात अधिक गर्मी होने की भी संभावना है। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं दिव्या तोमर।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द किए जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार मंत्रालय ने कहा ऑफलाइन परीक्षा पर साइबर खतरा, जांच सीबीआई को। पत्र आगे लिखता है नेट रद्द, अब नीट की बारी। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री के कल नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन को सचित्र देते हुए उनके इन शब्दों को पहली खबर बनाया, किताबें भले जल जाएं, ज्ञान को नहीं मिटा सकती आग। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी को राष्ट्रीय सहारा ने पहली खबर बनाते हुए कहा कि टूटता कहर, लोगों की जान पर पड़ रहा भारी। हिन्दुस्तान कहता है दिल्ली से साउदी तक त्राही त्राही। अमर उजाला की खबर है देश के अधिकांश हिस्सों में एसी की रिकॉर्ड बिक्री, 3 महीने में ही घरेलू एसी उद्योग में करीब 50% वृद्धि। जनसत्ता की ब्लॉक खबर में है वायु प्रदूषण से वर्ष 2021 में भारत में 21 लाख लोगों ने गंवाई जान। पत्र ने यूनिसेफ की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखा जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की विदेशों से धन प्रेषण सेवा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने धान और कपास सहित 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। वाराणसी हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल और रनवे के विस्तार को भी स्वीकृति दी। सरकार ने परीक्षा में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा 2024 रद्द की, सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत और 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।